O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a revisar tu luz check engine, luz ABS o luz de mantenimiento con O'Reilly Veriscan. El servicio es gratis y recibirás un informe con soluciones verificadas por técnicos maestros certificados ASE. Si necesitas ayuda, O'Reilly Auto Parts te puede recomendar un taller. Pregunta por O'Reilly Veriscan hoy mismo. O'Reilly
Auto Parts. Starting a new life in Australia isn't easy.
A lot of companies have rejected me.
Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
शुरू करने से पहले हम पूरे ऑस्ट्रेलिया में देश के पारंपरिक संरक्षकों को और भूमि, समुद्र और समुदाय के साथ उनके संबंध को स्वीकार करते हैं। हम पूर्व और वर्तमान के बुजुर्गों को अपना सम्मान प्रकट करते हैं और आज सुन रहे सभी अबोरिजिनल और टॉरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोगों को भी अपना सम्मान व्यक्त करते हैं। ये पॉडकास्ट मुख्य रूप से वुरुंजरी और गाडिगिल भूमि पर तैयार किया गया था और इसमें पूरे ऑस्ट्रेलिया से लोगों के साथ किए गए इंटरव्यू शामिल हैं।
मेरे वीजा प्रतिबंधों के कारण मुझे बहुत सी कंपनियों से इनकार सुनने को मिला। मुझे कई जगह इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं छात्र हूं, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा, हमें खेद है। वास्तव में हमें फुल टाइम काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। भले ही मुझे प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन फिर भी मुझे इसी कारणवश इनकार मिला और ये बहुत दुख की बात है।
वर्क इन प्रोग्रेस में आपका स्वागत है। ये पॉडकास्ट उन प्रोफेशनल्स की कहानियाँ सुनाता है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपना घर बनाने का फैसला किया। इसमें आपको करियर बनाने के लिए उपयोगी सुझाव, विशेषज्ञों की सलाह और ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख संस्थाओं से मार्गदर्शन मिलेगा। ऑस्ट्रेलिया एज्ड केयर कार्यबल की कमी का सामना कर रहा है। इस अनुमान के साथ कि 2030 तक ऑस्ट्रेलिया में हर 5 में से एक व्यक्ति 65 साल से अधिक आयु का होगा, एज केयर सेवाओं की मांग आपूर्ति से कहीं अधिक बढ़ रही है।
It is definitely a sector that is in dire need of workers.
ये निश्चित रूप से ऐसा क्षेत्र है जहां कर्मचारियों की कड़ी आवश्यकता है। मुझे ऐसा लगता है कि साल 2030 तक देश तकरीबन 1,00,000 से अधिक एज केयर कर्मचारियों की कमी का सामना करेगा। इसलिए निस्संदेह प्रत्यक्ष देखभाल कर्मचारियों की तत्काल आवश्यकता है।
ये एरिन बेगी हैं, जो वृद्ध एवं विकलांग देखभाल कर्ताओं के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन कम्युनिटी वर्क ऑस्ट्रेलिया में असेसमेंट सर्विसेज मैनेजर के रूप में कार्यरत हैं। कार्यबल की उस पैमाने पर कमी के चलते सांस्कृतिक और भाषाई विविधता केवल सहायक ही नहीं है, बल्कि ये अत्यावश्यक भूमिका निभाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में वृद्ध लोगों की आबादी अविश्वसनीय रूप से विविध है। एज केयर प्राप्त करने वाले हर 3 में से एक व्यक्ति का जन्म विदेश में हुआ था। इसलिए बहुसांस्कृतिक ग्राहक आधार की जटिल आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से नियोक्ताओं द्वारा अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाएं बोलने वाले कर्मचारियों की मांग तेजी से बढ़ रही है।
In the aged care sector in Australia,
ऑस्ट्रेलिया में एज्ड केयर क्षेत्र में देखभाल प्राप्त करने वाले लोगों में कैल्ड या सांस्कृतिक और भाषाई रूप से विविध पृष्ठभूमि के लोग बड़ी संख्या में शामिल हैं। इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ डिमेंशिया या मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों के लिए दोबारा से अपनी मातृभाषा या अपनी प्रथम भाषा में बातचीत शुरू करना सामान्य है। फिर बेशक वे पहले अंग्रेजी में बहुत सहजता से ही बात क्यों न करते हों। इसलिए कैल समुदायों के देखभालकर्ताओं द्वारा इस क्षेत्र में नौकरियों के बारे में सोचना निश्चित रूप से फायदेमंद है।
लेकिन इस अंतर को कम करने में विदेशी कर्मचारी असल में क्या भूमिका निभा रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया में एज्ड केयर में करियर शुरू करने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? एल्विन इनकार्नेशन साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया आए थे। उन्होंने एज्ड केयर में अपना करियर शुरू करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा था, लेकिन आज उनके अनुसार उन्हें अपना लक्ष्य मिल गया है।
वृद्ध लोगों के साथ काम करना, उनके अनुभवों के बारे में जानना बहुत संतोषजनक है। ज्यादातर वृद्ध लोगों के साथ मुझे ऐसा महसूस होता है कि वे मेरी अपनी दादी नानी जैसी हैं, और उनके लिए काम करते हुए मुझे ये लगता है कि जैसे मैं अपनी दादी नानी की ही मदद कर रहा हूँ। एज केयर इंडस्ट्री में काम करना वास्तव में संतोषजनक है। हालांकि मेरा परिवार यहाँ नहीं है, पर फिर भी मुझे अपनेपन का एहसास हुआ। मैं अपने सहकर्मियों और वृद्ध लोगों को अपना परिवार मानता हूँ। मेरे लिए ये नौकरी नहीं बल्कि कर्तव्य भावना है।
उत्तरी फिलीपींस के भव्य पहाड़ों से घिरे हुए एक छोटे से शहर गाटरन के मूल निवासी आल्विन के अनुसार कई युवा फिलिपिनो लोग ऑस्ट्रेलिया आने की इच्छा रखते हैं।
After graduating, they want to go out of the Philippines and start their career.
स्नातक होने के बाद वे फिलीपींस से बाहर किसी दूसरे देश में जाकर अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि वहां उनके लिए अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं। यदि आप किसी दूसरे देश में जाकर शुरुआत करते हैं तो आपके लिए अपने सपने को साकार करना अधिक आसान हो जाता है। मुझे ये कहते हुए बहुत बुरा लगता है, लेकिन ये वो सच्चाई है जिसमें मैं पला बड़ा हूँ। मेरे देश में बहुत भ्रष्टाचार फैला हुआ है, और मुझे लगता है कि यही ऐसा सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बहुत से लोग दूसरे देश में जाकर अपना जीवन जीना चाहते हैं।
आल्विन फूड प्रोसेसिंग व्यवसाय करने वाले एक साधारण परिवार से संबंध रखते हैं। उन्होंने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद करने के उद्देश्य से फूड साइंस में पढ़ाई की। यहाँ आने से पहले उन्होंने प्रोफेशनल कॉलेज में एक साल तक ये विषय पढ़ाया। वे ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पर आए, जिसका अर्थ था कि वे पढ़ाई करने के दौरान हर दो सप्ताह में केवल 48 घंटे ही काम कर सकते थे।
मेरे वीजा प्रतिबंधों के कारण मुझे बहुत सी कंपनियों से इनकार सुनने को मिला। मुझे कई जगह इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मैं छात्र हूं, तो उन्होंने मुझे स्पष्ट रूप से कहा, हमें खेद है, वास्तव में हमें फुल टाइम काम करने वाले लोगों की आवश्यकता है। भले ही मुझे प्रोत्साहन दिया गया, लेकिन फिर भी मुझे इसी कारणवश इनकार मिला, और ये बहुत दुख की बात है।
उन्होंने नौकरी प्राप्त करने के लिए एक साल तक कई जगह सीवी भेजे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। इस बीच उन्होंने फूड इंडस्ट्री में नौकरी प्राप्त करने की उम्मीद के साथ एडवांस्ड डिप्लोमा ऑफ मैनेजमेंट की पढ़ाई की। उनके सफर की शुरुआत कठिन थी। वे फिलीपींस से अपने साथ कुछ भी नहीं लाए थे, और उनका परिवार गाँव के लोगों की सहायता की बदौलत उनकी हवाई टिकट का खर्चा उठा सका था। हालांकि वे कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मिले समर्थन से वे आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कम्युनिटी पैंट्री को विशेष रूप से उपयोगी पाया, जो निशुल्क भोजन और अन्य आवश्यक चीजें वितरित करने वाले सेंटर हैं।
I've attended to some of those pantries.
इनमें से कुछ पैंट्रीज में से मैंने कुछ खाने पीने की चीजें, निशुल्क खाना, कुछ निशुल्क कपड़े प्राप्त किए। मेरे देश में ये सब प्राप्त करना वास्तव में बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग भूखे मर रहे हैं, सरकार उन्हें कुछ भी नहीं दे सकती है, लेकिन यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आप इन सब चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। ये सब देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित हुआ, यहाँ तक कि मेरे परिवार के लोग भी। इस देश में आकर मैं उन्हें वीडियो कॉल करता हूँ, वे ये जानकर बहुत खुश होते हैं कि मेरे पास खाने पीने का सामान है। भले ही मेरे पास नौकरी ना हो, लेकिन मेरे पास खाना है।
लेकिन आल्विन को नौकरी की सख्त जरूरत थी। उन्होंने गार्डनिंग, क्लीनिंग और रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में काम किया। फिर संयोगवश एक मुलाकात ने उनके जीवन को लक्ष्य प्रदान किया। एक महिला से बातचीत के दौरान उन्हें ये पता चला कि मेलबर्न में सनशाइन हॉस्पिटल में सहायक कर्मचारियों की आवश्यकता है। बचपन से ही आल्विन का सपना डॉक्टर बनकर हेल्थ इंडस्ट्री में काम करना था। अपनी आकांक्षाओं को छोड़कर अपने पारिवारिक व्यवसाय में मदद करने के कई सालों बाद ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए उन्हें दोबारा इसकी याद आई।
मैंने अलग अलग वार्ड में काम किया है, मुझे हर जगह काम करने का मौका मिला। मैं नीचे मैनेजमेंट में भी काम करता हूँ, जहाँ जब किसी इमरजेंसी कॉल के लिए बुलाया जाता है तो हम उन लोगों जिन्होंने इमरजेंसी कॉल की है को इमरजेंसी में जाने में सहायता देने के लिए खड़े होते हैं, और इसके अलावा मुझे शवों को उठाना होता है। उन्हें मुर्दा घर में रखना होता है। उन्होंने मुझे हर चीज करने का मौका दिया और मुझे लगता है कि ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा अनुभव है।
अल्विन ने हेल्थ केयर में एज्ड केयर के माध्यम से जाने का निर्णय लिया। अपनी पिछली पढ़ाइयों की बदौलत उन्होंने एजिंग सपोर्ट में सर्टिफिकेट फोर से शुरुआत की। उनका कहना है कि वृद्ध लोगों की देखभाल करना उनके स्वभाव में है। इस क्षेत्र में अक्सर लोग सर्टिफिकेट 3 इन इंडिविजुअल सपोर्ट से शुरुआत करते हैं। ये लोगों को एज्ड केयर सपोर्ट वर्कर, पर्सनल केयर असिस्टेंट और इसी तरह के फ्रंटलाइन पोजीशन जैसी भूमिकाओं के लिए तैयार करता है। लेकिन जैसा कि एरिन बताती हैं, इस क्षेत्र में काम शुरू करने के लिए वर्तमान में कोई राष्ट्रीय मानक या औपचारिक पूर्व आवश्यकता नहीं है, इसलिए कई लोग ऑन द जॉब ट्रेनिंग से शुरुआत कर सकते हैं और समय के साथ साथ अपनी योग्यताओं को बढ़ा सकते हैं।
Some employers are a little bit more flexible with their
कुछ नियोक्ता अपनी आवश्यकताओं के मामले में थोड़े अधिक लचीले होते हैं, इसलिए वे योग्यता की आवश्यकता को अनिवार्य न मानते हुए वांछनीय मानते हैं, या वे ये भी स्वीकारते हैं कि व्यक्ति अपनी योग्यता काम के साथ साथ पूरी कर रहा हो सकता है और ये जरूरी नहीं है कि योग्यता पहले से ही पूरी की गई हो, या कुछ मामलों में वे योग्यता की आवश्यकता को पूरी तरह से हटा सकते हैं और उस क्षेत्र में व्यक्ति को पिछले कार्य अनुभव को देखने के लिए कह सकते हैं।
नियोक्ताओं द्वारा कर्मचारियों को अपने साथ बनाए रखने में पेश आने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए वे नए कर्मचारियों को लुभाने एवं उनका समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में कोर्स फीस को कवर करने की पेशकश भी कर सकते हैं। कुछ राज्यों और टेरिटरीज में कुछ विशिष्ट प्रकार के वीजा धारक शरणार्थियों और रिफ्यूजियों के लिए निशुल्क टेफ कोर्सेज भी उपलब्ध हैं। कुछ अस्थायी वीजा धारक फीस में छूट या ट्रेनिंग लागत में डिस्काउंट के पात्र हो सकते हैं, जिससे विविध पृष्ठभूमि के लोगों के लिए एज्ड केयर और अधिक सुलभ करियर मार्ग बन सकता है। लिडिया किरोपुलू एक एज्ड केयर एवं कम्युनिटी सर्विस प्रोवाइडर में टीम लीडर के रूप में कार्यरत हैं। वे ग्रीस के उत्तर में रीजनल क्षेत्र कोजानी की मूल निवासी हैं और अपने देश में थिएटर नर्स के रूप में कार्यरत थीं। 2015 में ऑस्ट्रेलिया आने के बाद उन्होंने एज्ड केयर में अपना करियर शुरू करने का निर्णय लिया। चूंकि ये इंडस्ट्री बहुत से ऐसे प्रवासियों को आकर्षित करती है जो केयर सेक्टर में पहली बार कार्य करते हैं, इसलिए वे ट्रेनिंग के लिए प्रतिबद्धित होने के महत्व पर जोर देती हैं।
Get your training seriously.
अपनी ट्रेनिंग को गंभीरता से पूरा करें। हालांकि कोई भी ट्रेनिंग आपको ये नहीं सिखा सकती कि देखभाल कैसे करनी है, लेकिन ट्रेनिंग से आपको चीजों को सही ढंग से करने के बारे में जानकारी मिलती है, ताकि आप खुद को नुकसान न पहुंचाएं, आप अपने क्लाइंट को नुकसान न पहुंचाएं। इसलिए हर चीज को गंभीरता से लें, कोई जल्दबाजी ना करें। आप किसी भी कारण से काम कर रहे हो सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब आप इस क्षेत्र में हैं और काम कर रहे हैं, इसलिए उसे गंभीरता से लें। आप लोगों के जीवन से जुड़ी भूमिका निभा रहे हैं।
लिडिया अपने वर्तमान कार्यस्थल पर लगभग एक दशक से कार्यरत हैं, जहां उन्होंने स्वयं सेवक के रूप में शुरुआत की थी।
It will give you an understanding of what the employer
इससे आप नियोक्ता की अपेक्षाओं को समझ पाएंगे और ये भी जान सकेंगे कि क्या आप भविष्य में इसे करना चाहते हैं या नहीं। ऐसा हो सकता है कि जब आप स्वयं सेवा कर रहे हों तो आप ये निर्णय लें कि ये आपके लिए नहीं है और आप मार्ग बदलना चाहें। इसलिए आपके लिए पहले कदम के रूप में इस क्षेत्र में जाकर ये देखना उचित रहेगा कि चीजें कैसे काम करती हैं और आपसे क्या अपेक्षा की जाती है, और यदि आप इस क्षेत्र को पसंद करते हैं तो आप अपने नियोक्ता को अपनी प्रतिभा दिखाने या अपना नेटवर्क बनाने और रोजगार पाने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर सकते हैं।
एल्विन ने अपनी पढ़ाई के दौरान ही पर्सनल केयर में अपनी पहली नौकरी प्राप्त की।
When I applied there, I'm still studying.
जब मैंने वहाँ नौकरी के लिए आवेदन किया था तो उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था। क्योंकि मेरे पास अस्पताल में काम करने का अनुभव पहले से ही था, इसलिए उन्होंने मुझे मौका दिया। मुझे बस उन्हें ये दिखाना है कि मैं काम के लिए उत्सुक हूँ और सीखना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, यदि आप वास्तव में खुद पर और भगवान द्वारा आपके लिए बनाई गई योजनाओं पर विश्वास करते हैं, तो सबसे असंभव चीज भी सच में पूरी हो सकती है।
एल्विन अप कम्युनिटी सर्विसेज में डिप्लोमा की पढ़ाई कर रहे हैं। उनके अनुसार इस इंडस्ट्री में उनके 7 महीने के कार्यकाल के दौरान उन्होंने घर वापस जाते समय कभी भी थकावट महसूस नहीं की, क्योंकि उन्हें अपना काम करने में वास्तव में मजा आता है, भले ही कभी कभार ये चुनौतीपूर्ण हो जाता है। वे अंग्रेजी के साथ फिलीपींस में बोले जाने वाली इलोकैनो और टैगलॉग दोनों भाषाएं बोलते हैं। लिडिया कहती है कि भावी नियोक्ताओं द्वारा उनके भाषा कौशल और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को बहुत महत्व दिया जाता है।
The language and the culture that you bring from your own country.
आप अपने साथ अपने देश से जो भाषा और संस्कृति लेकर आते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप लोगों की देखभाल कर रहे हैं, अब वे लोग अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं, और अंग्रेजी की जानकारी होने के बावजूद भी वे अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाजों, अपनी भाषा को दोबारा से अपनाना चाहते हैं। इसलिए ऐसा कर्मचारी जो एज्ड केयर क्षेत्र में अपने क्लाइंट के साथ जुड़ने पर उनकी संस्कृति और भाषा को समझ सकता है, वो नियोक्ता के लिए हीरे के समान है।
एल्विन की तरह ही लिडिया ने भी एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन के बाद इस क्षेत्र में काम करना शुरू किया। उन्होंने होम केयर सहायता में काम करना शुरू किया और आज वे होम सर्विसेज प्रदान करने के लिए सरकारी फंडिंग का प्रबंधन करती हैं। इस क्षेत्र में अपने करियर को आगे बढ़ाने के कई अवसर हैं।
You might be starting as an aged care worker. Following
आप किसी प्रासंगिक योग्यता को पूरा करने के बाद एज्ड केयर कर्मचारी के रूप में काम शुरू कर सकते हैं। इस क्षेत्र में शुरुआत करने पर आपके लिए अपने करियर को आगे बढ़ाने के कई अवसर हो सकते हैं। इसका मतलब आगे और पढ़ाई करना भी हो सकता है। ऐसा करने से आप इस क्षेत्र में अपनी पसंद की नौकरियां प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप कम्युनिटी सर्विसेज का डिप्लोमा पूरा करते हैं तो आप एज्ड केयर कर्मचारी की भूमिका से लेकर टीम लीडर, होम केयर कोऑर्डिनेटर, रेजिडेंशियल केयर ऑफिसर या यहाँ तक कि एज्ड केयर मैनेजर की भूमिका भी तलाश कर सकते हैं। इसलिए यहाँ आगे बढ़ने के कई अवसर हैं।
विशिष्ट इमिग्रेशन उद्देश्यों के लिए स्किल्स असेसमेंट की आवश्यकता होती है। एरिन बताती हैं कि कम्युनिटी वर्क ऑस्ट्रेलिया वृद्ध एवं विकलांग देखभालकर्ताओं के लिए स्वीकृत स्किल्स असेसमेंट प्राधिकरण है।
The process of assessing somebody's
किसी व्यक्ति की स्किल्स असेसमेंट प्रक्रिया में उन योग्यताओं का आकलन किया जाता है जो उसने मुख्य रूप से विदेश में प्राप्त की हो। यदि आपने अपनी योग्यता विदेश में प्राप्त की है, चाहे वो ऑस्ट्रेलियाई योग्यता हो या विदेशी योग्यता, तो आपको स्किल्स असेसमेंट करवाना होगा, और यही बात कार्य अनुभव पर भी लागू होती है। इसलिए यदि आपके पास कोई प्रासंगिक योग्यता नहीं है तो आपकी औपचारिक योग्यता के बदले में आपके कार्य अनुभव का आकलन किया जा सकता है। इसका प्रयोग ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि यदि आपने पहले किसी प्रदाता के लिए काम किया है या नहीं, और आपको देखभाल और सहायता प्रदान करने का अनुभव प्राप्त है, और आप इसे सबूतों के साथ पेश कर सकते हैं।
कम्युनिटी वर्क ऑस्ट्रेलिया के माध्यम से स्किल्स असेसमेंट के लिए आवेदन करने में 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है। ये भावी नियोक्ताओं के लिए भी मददगार साधन है। इस क्षेत्र में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए साल 2023 में एज्ड केयर इंडस्ट्री लेबर समझौता शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य विदेशों से देखभाल कर्मचारियों की भर्ती को सुव्यवस्थित करना था, लेकिन ये पहले से ही ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एज्ड केयर कर्मचारियों पर भी लागू हो सकता है। एरिन समझाती हैं कि ये कैसे काम करता है।
Australian employers can apply to access the agreement.
ऑस्ट्रेलियाई नियोक्ता समझौते तक पहुंच प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं, और वे नर्सिंग सहायक कर्मचारी, पर्सनल केयर सहायक और वृद्ध या विकलांग देखभालकर्ता जैसे प्रमुख देखभाल व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को स्पॉन्सर कर सकते हैं। इसलिए नियोक्ताओं को पहले प्रासंगिक यूनियन के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में प्रवेश करना आवश्यक है, और फिर वे लेबर समझौते के लिए आवेदन कर सकते हैं, और नियोक्ता के साइन अप हो जाने के बाद वे अपने संगठन में 3 प्रत्यक्ष देखभाल व्यवसायों में से 1 में काम करने के लिए विदेशी कर्मचारियों को नामित कर सकते हैं।
गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले एज्ड केयर प्रदाताओं की सूची प्रदान की गई है, और इससे ये भी ज्ञात होता है कि कौन सा नियोक्ता प्रवासी कर्मचारियों को रोजगार देने में अधिक दिलचस्पी रखता है। लिडिया ने ग्रीस में होते हुए ही सेवा प्रदाताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया था ताकि उन्हें ये पता चल सके कि यहाँ आने पर उन्हें क्या करना है। वे हमेशा मदद मांगने में विश्वास रखती हैं।
I reached out to them whilst I was in Greece.
ग्रीस में रहते हुए मैंने उनसे संपर्क किया और उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें कौन सी चीजों की आवश्यकता है और मुझे क्या करना होगा। उन्होंने मुझे कहा कि वे मुझे काम पर तभी रख सकते हैं जब मेरे पास ऑस्ट्रेलिया में काम करने की पात्रता होगी, तथा उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया। उन्होंने मुझे बताया कि मुझे किस तरह की योग्यताएं चाहिए और मैं अंतर्राष्ट्रीय छात्र के रूप में ये योग्यता कहाँ से और कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। इसलिए मदद की आवश्यकता होने पर हमेशा मांगें। मैं हमेशा इसकी सलाह देती हूँ।
इस क्षेत्र में कई सालों तक विभिन्न भूमिकाओं में काम करने के बाद लिडिया का ये मानना है कि एज केयर कर्मचारी होने के लिए आपके स्वभाव में सहानुभूति और नैतिकता का होना बहुत जरूरी है।
Please have heart when you get into the care sector.
यदि आप केयर सेक्टर में काम करते हैं तो सहानुभूति रखें। ये सोचें कि एक दिन मेरी भी ये स्थिति होगी, आप ही सहायता प्राप्त करता होंगे, और यदि आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी परवाह नहीं करता तो स्थिति अधिक बुरी होगी। इस क्षेत्र में ये सोचकर आए कि आपको कठिन काम करने की आवश्यकता होगी, लेकिन आप यहाँ सहायता देने के लिए हैं और आपको बदले में प्रतिफल मिलेगा।
एल्विन इन सिद्धांतों को दर्शाते हैं।
Working in the aged care, it's not just a job.
एज केयर में काम करना सिर्फ एक नौकरी करना ही नहीं है। मैंने इसे धैर्य, सहानुभूति और जीवन के प्रति गहरा सम्मान करना सीखा है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करने के लिए आपको इसे आजमाना होगा। एज केयर में काम करने के बारे में ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। मैंने लोगों को ये कहते हुए सुना है कि यह काम वास्तव में रोचक नहीं है। आप कुछ असंयमी वृद्ध लोगों से भी मिलेंगे। जीवन में ये आम बात है, हम सभी बाद में ऐसी ही स्थिति में होंगे। आपको बस उनके साथ ज्यादा धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। आप बस ये सोचें कि आप अपने दादा दादी या नाना नानी के जैसे उनकी मदद कर रहे हैं, और ऐसे सोचने से आप वास्तव में अपने काम को आसान और ज्यादा रोचक बना सकते हैं। नौकरियों के बारे में रूढ़िवादी सोच पर ध्यान न दें। यदि आप वास्तव में इसे करना चाहते हैं तो बस कर डालिए।
SBS ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड के वर्क इन प्रोग्रेस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। इसकी लेखिका और निर्माता है फ्रांचिस्का वाल्डिनोची, ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड की संपादिका है रोजा गर्मियन और प्रोग्राम मैनेजर है जनीन गुगन। ये SBS ऑडियो पॉडकास्ट है। वर्क इन प्रोग्रेस में हम नर्सिंग, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, इंजीनियरिंग, ICT, कंस्ट्रक्शन अर्थात भवन निर्माण और एज केयर अर्थात वृद्ध देखभाल में करियर्स की बातचीत करते हैं। यदि आप या आपका कोई जानकार इन क्षेत्रों में खोजबीन कर रहा है तो SBS ऑडियो ऐप या जहां भी आप अपने पॉडकास्ट सुनते हैं वहां वर्क इन प्रोग्रेस को सब्सक्राइब करें और सुने। ऑस्ट्रेलिया में अपने नए जीवन में बसने से जुड़े और अधिक उपयोगी सुझावों के लिए ऑस्ट्रेलिया एक्सप्लेन्ड पर जाना ना भूलें। सुनने के लिए धन्यवाद और अधिक जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।